नमाम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने स्वपिंडान काले आगते वणिग मुनि निरपस्नाता निर्गम्य अर्थान प्रपेदिरे वर्ष रुद्धा जथा सिद्धा स्वपिंडान कालयागते वणिक व्यापारी वर्ग मुनि सन्यासी नृप राजा स्नाता विद्यार्थी गण निर्गम्य निकल कर अर्थान अपने अपने प्राप्तव्य को प्रपेदिरे प्राप्त किए करने लगे वर्ष रुद्धा वर्षा के कारण जो एक जगह रुके थे यथा सिद्धा जैसे सिद्ध लोग भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के बाद या ज्ञान में सिद्ध होने पर योग में सिद्ध होने पर काले स्वपिंडान अपने अपने प्राप्तव्य विषय को काले आगते समय आने पर प्राप्त करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। तो इस अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं और इसी में बहुत उच्च कोटि की का ज्ञान देते जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि व्यापार करने वाले और सन्यासी और राजा और ब्रह्मचारी ये वर्षा काल में एक जगह रुक जाते हैं, चातुर्मास में कहीं नहीं जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? वर्ष रुद्धा वृष्टि के कारण, वर्षा बहुत ज्यादा होती है इसलिए वो एक जगह रहते हैं, घूमते नहीं है, अपना अपना काम नहीं कर पाते हैं। वर्षा अधिक होने से बहुत शस्य उग जाती है, फसलें उग जाती हैं और कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए उनकी हत्या न हो, हिंसा न हो, इसलिए वे इधर उधर घूमते नहीं है ये चारों लोग। वणिग, मुनि, नृप और स्नातक। वणिग का अर्थ है व्यापार करने वाले, एक जगह से सामान लेकर के दूसरे जगह की यात्रा करना उनके लिए कठिन होता है वर्षा काल में। वर्षा काल में बहुत पानी हो जाता है तो इसलिए नदियों में बाढ़ आ जाती है, इसलिए वो पार करना कठिन होता है सामान लेकर के, और रास्ता अवरुद्ध हो जाता है जहां तहां पानी भर जाता है, तो वे लोग व्यापार बंद कर देते हैं। अब की बात नहीं है, ये बहुत पहले ऐसा होता था। नदियों में पानी भर जाने से, बाढ़ आ जाने से पार करना कठिन होता था, नौकाएं भी नहीं चल पाती थी और इतने ब्रिज बने नहीं थे पहले, उसमें दिक्कत होती थी। तो व्यापारी व्यापार नहीं कर पाते थे, घर में बैठे रहते थे 4 महीने वर्षा काल में, जिसको चातुर्मास्य कहते हैं। और मुनि सन्यासी भी वर्षा काल में घूमते नहीं, भ्रमण नहीं करते हैं। सन्यासी का काम है स्वच्छंद विचरण करना, घूमना, लेकिन वर्षा काल में वे भी रुद्ध अवरुद्ध हो जाते हैं, एक जगह रहते हैं, घूमते नहीं है। मुख्य कारण है घास पात बहुत बढ़ जाती है और सूक्ष्म कीड़े कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं, तो उनकी हत्या न होने पावे इसलिए सन्यासी लोग चलते नहीं है वर्षा काल में। यहां मुनि शब्द से अर्थ है भक्त या जोगी, सन्यासी जो विरक्त हैं वे स्वच्छंद विचरण नहीं करते हैं, जबकि इनका काम है स्वच्छंद विचरण करना और कृष्ण भावना का उपदेश करना, परंतु वर्षा काल में सब काम बंद हो जाता है। और राजा लोग जो दिग्विजय आदि करते हैं उनका काम भी बंद हो जाता है, सेना लेकर के इधर उधर भ्रमण नहीं करते हैं, अपनी राजधानी में रहते हैं। और स्नातक ब्रह्मचारी लोग जो गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं वे वर्षा काल में बंद रहते कुटिया में, क्योंकि पहले पढ़ाई होती थी वृक्षों के नीचे जंगल में, लेकिन वर्षा काल में अधिक वर्षा होने से वे पढ़ नहीं सकते, विद्यालय बंद हो जाता था। तो इन सबके लिए यहाँ प्रयोग है वर्ष रुद्धा, वर्षा से रुक गए, लेकिन वर्षा जब बंद हुई शरद काल आया तो सब निर्गम्य अपने अपने आश्रम से, घर से, राजधानी से निकल कर अर्थान प्रपेद रहे, अपने अपने काम में लग गए। तो सुखदेव को स्वयं बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सिद्ध, सिद्ध का अर्थ है जो जीवन में परफेक्ट हो गया साधना करके, तो समय आने पर अपना प्रारब्ध बीतने पर दूसरा शरीर प्राप्त करता है, जैसे देवता का शरीर या भगवान के पार्षद का शरीर, और उसके अनुसार विविध भोगों को प्राप्त करता है। पार्षद शरीर में जो जाता है उसको तो भगवान की सेवा डायरेक्ट मिलती है और देवताओं को स्वर्गीय सुख मिलता है, स्वपिंडन, अपने अपने हक को, अपने अपने सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि वर्षा काल में सन्यासी व्यापारी वर्ग, राजा और ब्रह्मचारी सब रुके रहते हैं अपने स्थान पर, और शरद काल आने पर अपने अपने स्थान से निकलकर अपना अपना कार्य करते हैं। अब आजकल तो पक्की सड़क बहुत बन गई और बहुत सी गाड़ियां हो गई, तो इसलिए वर्षा काल में भी घूमते रहते हैं सब लोग। लेकिन वर्षा काल में बहुत घूमना नहीं चाहिए। जो गाड़ी से चलते हैं, बस से या कार से, तो वो भी हत्या करते हैं। बहुत से कीड़े रोड पर रहते हैं और चारों चक्का से उनको पीसते जाते हैं। तो जो गाड़ी में सवार होते हैं उन सबको शेयर लेना पड़ता है हत्या में। वो अभी मारना हुआ तो वर्षा काल में सन्यासियों के लिए भ्रमण करना मना है। इसका अर्थ है कि प्रीचिंग बंद रहता है। हम अपनी साधना करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन प्रचार बहुत कम होता है। खास करके गांव में ये तो प्रचार बंद ही रहता है वर्षा काल में। लेकिन शरद काल आने पर फिर काम चालू हो जाता है। तो जो उदाहरण है वो बहुत अच्छा है। जैसे सिद्ध गण समय आने पर अपने अपने पिंड को प्राप्त करते हैं। साधना जो करता है उसको साधक कहते हैं और साधना जब पूर्ण हो जाती है तो उसको सिद्ध कहते हैं। हम लोग साधक हैं, साधना कर रहे हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। एक दिन यह मंत्र सिद्ध होगा। हरे कृष्ण महामंत्र जब सिद्ध होगा तो भक्तों को भगवान के पार्षद का शरीर मिलेगा। और जब पार्षद शरीर मिलेगा तो उसके अनुसार उनको भगवान की सेवा का सुख मिलेगा, दुख से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं सिद्ध। जो साधना कर रहे हैं उनको सिद्धि मिलेगी ही, केवल समय की बात है। वर्षा काल में जैसे रुके रहते हैं चारों लोग, तो ऐसे रुके रहते हैं ये अपना जो लक्ष्य है वो रुका हुआ रहता है। कैसे? जब तक यह शरीर है इसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध, जब तक प्रारब्ध है तब तक इस शरीर में रहना पड़ेगा और इस शरीर के पूरा होते ही भगवान के धाम में चले जाते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। इसी तरह से योग सिद्ध होते हैं। योग करते रहते हैं, अष्टांग योग, तो एक दिन उनको सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। और वे लोग अपने साधना के अनुसार देवता बनते हैं। कोई कोई भाग्यवान जो भगवान का ध्यान करता है तो भगवान के धाम में जाता है, लेकिन भक्तों को तो निश्चित ही पार्षद स्वरूप प्राप्त होता है। काले आगते, समय आने पर जब भगवान का धाम मिलने का समय आता है अपना प्रारब्ध मिट जाता है। प्रारब्ध कहते हैं जब तक अपने कर्म के अनुसार ये शरीर है तो इसी शरीर में रहना पड़ेगा और इस शरीर में सुख दुख जो भी भोग लिखे गए हैं वो भोगना पड़ता है। परंतु यह शरीर पूरा होने पर, प्रारब्ध पूरा होने पर अपना पिंड, अपना प्राप्तव्य प्राप्त हो जाता है। काले आगत है, समय आने पर। समय आने पर मतलब जब पार्षद शरीर मिलेगा उस समय। तो प्रत्येक शरीर में भोग है, देवताओं के शरीर में भोग है, पार्षदों के शरीर में भोग है। तो ये काल का एक बंधन है, कुछ वर्ष जब तक इस शरीर में रहना है तब तक रहेंगे, लेकिन इस शरीर को छोड़ने के बाद वो अपना पिंड मिलेगा। सिद्ध शब्द का प्रयोग किए हैं सुखदेव गोस्वामी, इसलिए इसका उपादेय अर्थ है, इसके द्वारा बुरा कर्म करने वाले को बुरी गति प्राप्त होगी, वे ये नहीं कह रहे हैं। ये सुनने में खराब लगेगा, इसलिए उसको नहीं कहे, क्योंकि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, योग साधना करते हैं, ज्ञान साधना करते हैं और सिद्ध होते हैं तो उनको अपना प्राप्तव्य मिलता है, यह कह रहे हैं। तो इसके अनुसार हमें अपनी साधना में लगे रहना चाहिए, यही उत्साह मिलता है। चलते रहें, एक दिन गंतव्य मिलेगा। जैसे कोई रास्ता हम पकड़ लिए हैं तो उस रास्ते पर चलते चलते एक दिन गंतव्य प्राप्त होता है, डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। तो ये आएगा, भगवान का नाम जब व्यर्थ नहीं हो सकता है, नाम का फल आएगा। और कई भक्त भगवान के धाम की यात्रा कर रहे हैं, इन सबका एक दिन फल आएगा। केवल काले आगते समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भागवत पढ़ना, भगवान के धाम में की यात्रा करना, परिक्रमा करना, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना, प्रणाम करना, इन सब का फल आएगा, धैर्य रखना चाहिए। काले आगते, जब समय आ जाएगा, यह शरीर पूरा होगा, उसके बाद भगवान का पार्षद शरीर प्राप्त होगा, उसमें हम भगवान की डायरेक्ट सेवा कर पाएंगे। ऐसे इस शरीर में भी भगवान की सेवा का सुख मिलता है, भगवान के भजन का आनंद प्राप्त होता है, परंतु जब प्रारब्ध के बीतने पर अपना स्वरूप प्राप्त होगा, उसमें जो सुख प्राप्त होगा उसकी तो कोई तुलना नहीं। विविध मंत्र हैं और अलग अलग मंत्रों की सिद्धि होती है। कई लोग कई प्रकार के मंत्र जपते हैं, योग साधना करते हैं, तो सबको अपने साधना के अनुसार सिद्धि मिलेगी। वास्तव में भगवान की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, साधना से नहीं होती है। साधना में कोई दम नहीं है, परंतु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं साधना देख करके। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो यही सिद्धि है, हमारे कर्मों से, भक्ति से भगवान को प्रसन्न होना चाहिए, यही परम सफलता है। हमारी साधना में कोई शक्ति नहीं है, हम साधना से भगवान को नहीं प्राप्त करेंगे। एक छोटी सी कथा है, जब भगवान राम लंका विजय करना चाहते थे तो उस समय बहुत बड़े मिस्त्री बुलाए गए, भगवान की सेना में ही थे नल और नील, तो समुद्र पार करके लंका में जाना था। तो समुद्र पर बहुत बड़ा पुल बनने लगा। विशाल सेना थी भगवान राम की, बानरों की और ऋक्षों की, तो उन सबको पार करना था, नहीं तो समुद्र में पुल नहीं बांधा गया होता, सेतु बंधन नहीं होता, तो सब डूबकर मर गए होते। तो समुद्र पर पुल बनने लगा, सेतु बंधन होने लगा, तो बड़े बड़े बानर वीर बड़ी बड़ी चट्टाने लेकर के, पहाड़ लेकर के आ जाते थे और नल नील को देते थे, तो उनके स्पर्श करने पर पुल बनने लगा, वो पत्थर पानी में तैरने लगे भगवान राम की कृपा से। तो पुल बन रहा था, बहुत बड़ा उद्योग चालू हुआ, बहुत लंबा और चौड़ा पुल बनाना था, 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल बनाना था। तो कितना बड़ा काम हो रहा था, काम होने लगा, पत्थर आने लगा, पत्थर को सजाते थे नल नील, साइज से बैठाते थे, बहुत धक्का था बानरों का, सब में बड़ा जोश था, जय श्री राम कह करके वे लोग पहाड़ लाते थे और राम पत्थर पर लिखा जाता था, एक पर रा और एक पर म, तो वही सीमेंट का काम करता था, वो तो पत्थर जुड़ जाते थे, तो बहुत बड़ा पुल बनने लगा। बहुत धक्का था बानरों के इस उद्योग को देखकर, एक गिलहरी थी पेड़ पर, तो वो उतरी और उसने सोचा कि मैं भी भगवान राम की सेवा करूंगी, पुल बनाने में मैं कुछ मदद करूंगी। तो उतर करके आई और भगवान राम एक शिला पर बैठकर ये सब दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा यो गिलहरी समुद्र में जाती है, अपने शरीर को पूरा भींगो करके आती है और बालू में लोट करके उसको सूखने पर फिर झाड़ देती है। जहां पुल बन रहा था उस पुल के ऊपर वहां बालू झाड़ देते थे। तब भगवान राम ने श्री हनुमान जी से कहा, देखिए आपकी सहायता ये कर रही है। तो हनुमान जी उद्विग्न थे, कह नहीं ये धक्का लग जाएगा, कहीं मर जाएगी, पिचल जाएगी, इसको हटाना चाहिए। और भी बानर बड़े चिंतित थे कि कहीं हमारे पैर से दब न जाए या किसी तरह से पत्थर में पड़ गई तो मर जाएगी। वो कोई पेड़ उठाने की शक्ति उसमें नहीं थी, कोई शाखा उठा नहीं सकती थी, पत्थर उठा नहीं सकती थी और पुल बनाने में लगी हुई थी। तो हनुमान जी गए और उसको पकड़ करके हाथ से बड़े प्यार से लिए और ले करके भगवान के चरण में रखे। तो भगवान बड़े स्नेह से उसको अपने बाएं हाथ पर लिए और उसको सहलाने लगे। भगवान के 3 अंगुली की लकीर उस पर पड़ गई और वही लकीर आज भी गिलहरी में सब जगह देखा जाता है। तो मुख्य बात यह है कि गिलहरी की साधना थी पुल बनाने की, उसमें वो क्या बेचारी कर सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा उसे मिल गई। भगवान राम ने पूछा उससे, तुम क्या कर रही हो यहां? तो उस गिलहरी ने कहा प्रभो मेरी शक्ति कुछ नहीं है पुल बनाने की, लेकिन पत्थरों में जो फांका रह जाता है उसको भरने का काम मैं कर रहे हैं। तो अपने शरीर को भिंगो करके वो रेत में लुढ़कती थी और रेत को झाड़ती थी पुल पर, जिससे उसका गैप, पत्थरों का जो गैप था वो भर जाए, वो एक काम कर रहे थे। आप उस पत्थर पर चलेंगे तो आपका चरण कमल कोमल है, ठोकर लग सकता है, तो इसलिए पत्थरों के गैप को भर रहे हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो यही हम लोगों का स्वरूप है, हम क्या साधना कर सकते हैं। भवसागर को पार करना है, इसके लिए हम में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान का जप करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान हमारी साधना को पूरा करेंगे। भक्त निष्ठ साधना, भक्त का परिश्रम और भगवान के हृदय में रहने वाले कृपा, ये दोनों जब मिलते हैं तब काम पूरा होता है। तो भगवान हमको मिलेंगे उनके हृदय में जो कृपा है जीवों के प्रति और विशेष करके भक्तों के प्रति, तो वे कृपा से ढल जाएंगे हमारे परिश्रम को देख करके। तो गिलहरी परिश्रम कर रहे थे, जितनी शक्ति थी उतना काम कर रही थी, अपने शरीर में कितना बालू लेकर के आती होगी, बहुत थोड़ा, लेकिन उसी से वो पत्थरों के गैप को भर रही थी, कोशिश कर रही थी। तो हमें कोशिश करना है, फिर भगवान का हस्त कमल, चरण कमल मिलेगा हमको। ये सत्य कथा है। क्या शक्ति है हम लोगों में भगवान को पाने की? भगवान वेदों के द्वारा भी दुर्लभ हैं, वेदे से दुर्लभ हम, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्त हो, अपनी भक्ति के कारण वे सुलभ हैं। तो भक्ति यही है, हम भगवान को पाने का पूरा प्रयास करें जितनी शक्ति है। यदि वाणी में शक्ति है तो जप करें, कीर्तन करें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, जानबूझ करके लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि मैं कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, नहीं, जब अभी शक्ति है तो आज क्यों नहीं पढ़ेंगे। सबसे उत्तम समय है वर्तमान, इस समय हमें भजन कर लेना चाहिए, भगवान का प्रचार कर लेना चाहिए। आगे कुछ पता नहीं है कि शरीर रुग्ण हो जाएगा या कोई सामाजिक घटना हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, इसलिए वर्तमान में जो भगवान ने शक्ति दिया है तो शक्ति का प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। जो धन दिया है तो धन से सेवा करें, शरीर स्वस्थ है तो शरीर से परिक्रमा करें, दर्शन करें। हमने देखा कि राज्य की परिक्रमा करने में बहुत वृद्ध माताएं बहुत मुश्किल से चल रही थी, लेकिन फिर भी चल रही थी और अंत में उनकी परिक्रमा पूरी हो ही गई। ये सब भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से ही साधना पूर्ण होती है। और भगवान अपनी सेवा देते हैं, जैसे उस गिलहरी को दिए। भगवान का हस्त कमल का स्पर्श प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, लेकिन भगवान उसको प्रेम दिए, तो उसकी लगन थी, सेवा की भावना थी, सेवा की शक्ति नहीं थी, क्या सेवा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लगी हुई थी। मैं समुद्र पर पुल बांधने में मदद करूंगी, तो ऐसे ही गिलहरी की तरह हमें प्रयास करना चाहिए। ये नियत होनी चाहिए कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है, क्योंकि मैं दास हूं, यही हमारा स्वरूप है। इस संसार में हम लोग देखते हैं सबसे अधिक प्यार करने वाली अपनी माँ होती है, बच्चे से, बच्चे से प्रेम करती है, सच्चा प्रेम। बच्चा छोटा रहता है, वो कभी कभी चलना नहीं जानता है, अगर ऊंचा पर चढ़ाना होता है किसी सीढ़ी पर, तो माता उसको ट्रेनिंग देती है, सिखाती है, चलाती है उस सीढ़ी पर। अगर चढ़ना नहीं जानता है तो वो चढ़ाती है सीढ़ी पर, और बच्चा यदि फिसलने लगता है तो वो संभालती है। और लेकिन अगर जानबूझ कर नहीं चलना चाहे तो उसको मारती भी है कि चढ़ो, मारती चढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन माता का प्रेम रहता है और बच्चा भी जानता है कि माँ हमसे प्रेम कर रही है। कभी कभी वो बच्चे को मारती है तो बच्चा रोने लगता है, तो दूसरे लोग समझाते हैं, अच्छा ठीक है मेरी गोद में आओ, वो मारती है तो उसके पास मत जाओ। लेकिन बच्चा फिर भी मां के पीछे जाता है और मां उसे जब गोद में लेती है, सहलाती है, तब वो हंसने लगता है, ठीक हो जाता है। और मां मारे तब भी उसके पीछे जाता है। तो इसी तरह से भगवान के हृदय में तो जितनी माताएं हैं, उन माताओं के हृदय में स्नेह है, वो सारा स्नेह एक जगह किया जाए तो उससे बहुत अधिक स्नेह भगवान का है। भगवान के हृदय में स्नेह का समुद्र है, वे दया सिंधु कहे जाते हैं। लेकिन यह भी कोई उचित नाम नहीं है भगवान का, क्योंकि समुद्र सीमित होता है, समुद्र में जल की एक सीमा होती है, लेकिन भगवान में कृपा की सीमा नहीं है, अनंत है। तो ऐसे भगवान कभी कभी लगे कि कृपा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कृपा ही करते हैं। अगर कोई कष्ट देते हैं या धन का अभाव प्रस्तुत करते हैं, फिर भी भगवान का स्नेह देखना चाहिए और उन्हीं के पीछे रहना चाहिए, हमेशा भगवान का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मारा भी राख भी जे इच्छा तो मार, आप मारिए चाहे प्यार कीजिए, जो इच्छा हो कीजिए, नित्य दास प्रतित्व अधिकार आपका अधिकार है, मैं आपका नित्य दास हूं, यही भाव रखना चाहिए हमेशा। साधना का अभिमान नहीं करना चाहिए, साधना के अभिमान से पतन होता है, भगवत कृपा का भरोसा रखना चाहिए, पर अपनी शक्ति के अनुसार जो कार्य करना है करते ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हम भगवान के मंगला आरती में नहीं जाएंगे, जप नहीं करेंगे और भगवान कृपा करेंगे ही, कृपा करने के लिए ही मंदिर में हैं और उनको सिखाने की जरूरत नहीं है कि कृपा कीजिए, उनमें स्वाभाविक कृपा है तो कृपा करेंगे ही, इस भ्रम में नहीं होना चाहिए। भगवान कृपा करेंगे, कृपा करके ही मनुष्य शरीर दिए हैं, मनुष्य शरीर में वाणी दिए हैं, कान दिए, हाथ दिए, कोटिन हूं कोटिन मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, करोड़ों मुंह से भी भगवान की कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो शरीर दिए हैं उस शरीर को भगवत भक्ति में लगाना है, हाथ दिए हैं तो हाथ से सेवा करनी है, पैर से परिक्रमा करनी है, हाथ दिए हैं तो इससे भगवत गीता बांटना चाहिए, आंख दिए हैं बुद्धि दिए हैं तो पढ़ना चाहिए। भगवान हमारी साधना को, हमारे परिश्रम को देखते रहते हैं। भगवान को ये सबसे नापसंद काम है आलस्य, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महारिपु, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। शरीर के भीतर रहता है आलस्य, मतलब लेजीनेस, आज का काम कल पर छोड़ना, अभी का जो काम है उसको थोड़े देर के बाद सोचना करने को, जो काम जिस समय करना है कर लेना चाहिए। आरती में भाग लेना है समय से लेना चाहिए, अपने घर पर भगवान की सेवा है तो सेवा स्वामी बनकर नहीं करनी चाहिए, सेवक मान करके, हम भगवान के सेवक हैं इसीलिए सेवा करने में उत्साह होना चाहिए, देर करके नहीं कि अच्छा ठीक है 4 बजे नहीं उठे तो 5 बजे उठ जाएंगे। अगर शरीर स्वस्थ है तो क्यों 5 बजे, 4 बजे उठना है तो उठेंगे, अगर बीमार है तो दूसरी बात है, उस समय भगवान सब देखते हैं उसको वे माफ करेंगे, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको वे माफ नहीं करेंगे, तमाचा मारेंगे जैसे माता मारती है बच्चे को। जो शक्ति दिए हैं जप करने की, पढ़ने की, सेवा करने की, तो इस शरीर का उपयोग कर लेना चाहिए। ये समय भी मिला है बहुत अच्छा, और समाज भी मिला है इतना सुंदर समाज जो प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को मिला है। इस प्रकार के मनुष्य कहाँ मिलेंगे जो भगवान की भक्ति में जुटे रहते हैं, एक उद्देश्य है भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, और एक मंत्र जप रहे हैं, एक ही मंत्र सभी एक स्थान पर है वृंदावन धाम में। अब इतना सुंदर देश और सुंदर समाज कहाँ मिलेगा, पता नहीं इसके बाद कहाँ जन्म होगा, दूसरा जन्म, जन्म तो होगा ही, जाता से ध्रुव जन्म, ध्रुव जन्म मृत्यु से चल। जो व्यक्ति शरीर ग्रहण किया है वो तो शरीर छोड़ेगा ही, और जो शरीर छोड़ा है उसको दूसरा जन्म मिलेगा ही, ये भगवान कहते हैं। तो एक दिन दूसरा शरीर मिलेगा, तो इसीलिए अन्य शरीर के मिलने से पहले हम भगवान का भजन करें। ऐसा करने पर भगवान कहते हैं कि त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सर्वजना, यह शरीर छूटने पर भक्त को मेरा सानिध्य मिलेगा, मेरी सेवा मिलेगी। तो भगवान की इस बात पर दृढ़ श्रद्धा करके हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। हरे कृष्ण।